शिवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं
सरस्वतीं व्यासं
ततो जयामुदीरये नष्टप्राये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठ्यं
भक्तिर्भवति नैष्ठ्यं
श्रीमद्भागवतं प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 6
सैव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्मा
ब्रह्मचर्यमखंडितं
सैव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्मा
ब्रह्मचर्यमखंडितं
सा एव प्रथमं देवः
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्मा
ब्रह्मचर्यमखंडितं सा एव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्मा
ब्रह्मचर्यमखंडितं
सा एव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्म
ब्रह्मचर्यमखंडितं सा एव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्म
ब्रह्मचर्यमखंडितं सा एव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्म
ब्रह्मचर्यमखंडितं सा एव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रिता
चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखंडितं
उसने
एव हि
प्रथमं पहला
देवः परमेश्वर
कौमारं
कुमारगण
अर्थात
अविवाहित
सर्गं
सृष्टि
आश्रिता
अधीन
चचार
संपन्न किया
दुश्चरं
करना अत्यंत कठिन
दुष्कर
ब्रह्मा की कोटि में
ब्रह्मचर्यम
ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त
करने की तपस्या में अखंडितम अविच्छिन्न अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मुक्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रसाद महाराज के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति फिर पालन और तब एक निश्चित काल विधि के बाद संहार होता रहता है। अतः वह जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार सत्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इस उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। ज्ञान तिमिरांधस्य
स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् वेदाया कृष्णपादान् सहगणकथितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि नदीकुले पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च सवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
उसके भी अंश के द्वारा, समझा? तो पहला, दूसरा और तो प्रथम पुरुष जो है वो कौन है? कारण दर्शन। दूसरे पुरुष कौन है? गर्भोदशा। तीसरे कौन है?
शिरोदशा।
तो शिरोदक्षाई विष्णु विष्णु ने, है ना, और उसके द्वारा शिरोदक्षाई विष्णु के द्वारा। इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट किया कहा गया, यस्य अंश अंशेन, जिसके अंश के द्वारा सृजन्ते। सृजन्ते मतलब सर्जन करते हैं, जिसके अंश के द्वारा सर्जन करते हैं। क्या? देव तीर्य नरादय, देव तीर्य नरादि स्वरूप प्रकट करते हैं। एतन नाना अवताराणाम निधान बीजमव्य, यही नाना अवतार अलग अलग रूप धारण करते हैं। और उसके बाद सैव प्रथमम देव, वही प्रथम देव है ना, सैव प्रथमम देव कौमारम सर्वमाश्रित, वही प्रथम देव। फिर प्रथम देव का क्या अर्थ होता है? उसी शिरोदक्षाय विष्णु से जो प्रथम देव अर्थात जो ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, और उसी के अंतर्गत सबसे पहले कौन प्रकट हुए, कौमारम सर्गमान कुमार अर्थात चतुष कुमार जिसको कहा जाता है ना, चार कुमार को उन्होंने प्रकट किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को प्रकट किया, चार दुष्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य खंडित, उन्होंने सब क्या किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और कठोर तपस्या किए। तो चार कुमार सबसे पहले इस सृष्टि में ब्रह्मा प्रकट हुए, और उसके बाद प्रकट कोई हुआ तो वो
चार कुमार,
सबसे पहले ब्रह्म संप्रदाय चालू हुआ, उसके बाद कुमार संप्रदाय चालू हुआ, और उसके बाद कौन सा संप्रदाय चालू होगा, उसके बाद रुद्र चालू होगा, और उसके बाद एक बार झगड़ा हो जाएगा तो उसमें लक्ष्मी जी प्रकट होगी, तभी स्त्री संप्रदाय। मजाक कर रहा हूँ, ब्रह्म संप्रदाय को आगे रखने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो सबसे पहले तो ब्रह्म संप्रदाय नहीं, सबसे पहले लक्ष्मी जी तो भगवान की नित्य इसलिए श्री संप्रदाय, ऐसे पहले दूसरा कुछ है ही नहीं, पहले दूसरा कुछ है नहीं, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय को आगे रखने के लिए मैं थोड़ा, ब्रह्मा जी सबसे पहले इसलिए ब्रह्म संप्रदाय। तो ये चार कुमार जो है वो संप्रदाय के कौन है, वो आचार्य, ऐसे चार संप्रदाय हुए, उसमें दो गृहस्थ और दो ब्रह्मचारी, ऐसा मैं एक ही ब्रह्मचारी का संप्रदाय चला, कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा जी भी विवाहित है और शिव जी भी विवाहित है और लक्ष्मी जी भी, हालांकि वो विवाहित होते हुए भी विवाहित नहीं है, जानते हैं आप, वो विवाहित होते हुए भी विवाहित, शिव जी जो है वो अपने गोद में बैठा के कथा करते हैं, भी बड़े बड़े लोग सुनने आते हैं, नारद जैसे और व्यास जैसे मुनि भी उसको सुनने के लिए जाते हैं, जब शिव जी कथा हम लोग समझ सकते हैं हम कि वो भले ही वो विवाहित है फिर भी वो, और ऐसे भगवान के ही स्वरूप है, भगवान का ही वो, इसलिए उसमें कोई गुण दोष का अनुमान लगाना हमारे लिए मुक्ता हो। तो स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यं खण्डितम्। उन्होंने दुश्चर, दुश्चर मतलब चर का अर्थ होता है चलना है ना, और दुष का मतलब बहुत कठिन, तो जिस पथ के ऊपर चलना बहुत कठिन है उस व्रत का उन्होंने क्या किया, और वैसे तो भक्ति मार्ग के विषय में भी ऐसे ही हम सुनते हैं कि वैसे कहा जाए भक्ति क्या है तो चैंटिंग डांसिंग क्रिश्चियन क्या है कुछ है उसमें, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चैंटिंग करो डांसिंग करो क्रिश्चियन करो, लेकिन अगर भक्ति के विषय में उसी भक्ति के विषय में कहा जाए तो सूरज से धारा कवियों बदलती, कवि लोग क्या कहते हैं सूरज से धारा, सूरज से धारा का क्या अर्थ होता है, सुर का अर्थ होता है तलवार, सुर का अर्थ हमेशा देता नहीं होता, तो सूरस्य मतलब सुर की जो धार है, सूरत से धारा कवियों बदलती मतलब तलवार की धार के ऊपर चलने बराबर है ना, ये वेद वाक्य है कि भगवान के, कई भक्त लोग का कहना है कि भगवान की भक्ति जो है वो ऐसे सरल भी है और वैसे कहा जाए तो सूरत से धारा, तो तलवार की धार के ऊपर चलने बराबर है, क्यों, क्योंकि इसमें व्यक्ति को बहुत ही संभल के चलना होता है, क्यों संभल के चलना होता है, नीति नियमों का पालन, चार नियम वो तो फिर खैर बहुत सरल हो जाता है, चार नियम के तोड़ने के लिए उतना मन भी नहीं करता है कभी भी, और क्या कठिन है इसमें जानते हैं आप, और क्या कठिन है तपस्या करना, ये भी बहुत कठिन नहीं है, आसक्ति ये आसक्तियों को छोड़ना ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जिसका विषय हो उसके लिए कठिन हो सकता है। तो क्या कठिन है ये सूरज से धारा कवियों क्यों बदलती, क्यों बोलते हैं कवि लोग, कवि अर्थात भक्त समझना चाहिए, तो कवि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि स्वर से धारा क्यों इतना कठिन है? भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, ये भी एक कारण है। क्योंकि अभी जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो हालत खराब हो जाते हैं, है कि नहीं? तो भगवान कई बार परीक्षा लिए है कई सारे भक्तों की, हालांकि दृष्टांत दिए हुए हैं, पूरे भागवत को भर के रखे हैं, है ना। जैसे अमरीश महाराज की परीक्षा ली गई थी, दुर्वासा मुनि आए थे, निर्जला करते थे बेचारे, एकादशी निर्जला कर दूसरे दिन आके उसको ही टपकना था, तो ये उनकी परीक्षा थी, हालांकि वो परीक्षा में पास हुए थे। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनकी भगवान ने परीक्षाएं ली हैं। जैसे पद्म पुराण आदि ग्रंथ में कई सारे राजा महाराजों की कथा आती है ना, और सूर्यवंश के राजा कई सारे उनकी भी कथा है ना। तो भगवान कई और से भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो ये कुछ हद तक ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्या सूरज से धारा क्यों कहते हैं इसको जानते हैं? ये भी है, भगवान किसी किसी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। हालांकि वो तो भगवान कृपा करते हैं वो तो सही बात है, तो भक्ति में भी लग जाता है, लेकिन फिर भी भक्ति में लगने के बाद भी सूरज से धारा क्यों है? तो पर नारा सिंपल कहते हैं पेंटिंग डांस भक्ति क्या है, बहुत सरल है। भागवत में नवयोगेंद्र महाराज ने जब भी भक्ति का वर्णन किया तभी उन्होंने कहा कि आंख बंद करके भी चलो, आंख बंद करके चलने वाला अंधा भी व्यक्ति होगा और वो दौड़ेगा ना, वो कभी नहीं गिरेगा। भक्ति का मार्ग ऐसा है। और एक जगह पर कहा जाता है फिर भी ये कैसा है, बहुत स्वाभाविक है ना, आंख बंद करके अगर दबा कर चलेगा तो पैर कट ही जाएगा। तो इसका कैसे समन्वय है? अगर हम बहुत ही सरलता से रहते हैं, भक्तों के प्रति अपना जो व्यवहार है बहुत सौम्य रखें, क्योंकि सबसे अभी स्वाभाविक है कि जो भक्ति में लग गया है वो भक्त है, और वो जानता है साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग, और वो कहाँ रहता है? साधु के संग में रहता है, इसलिए प्रभुपाद महाराज सुबह सुबह उसको क्या सुनाते हैं? हमें इस दस नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिसमें से प्रथम है उन महान भागवत वैष्णवों की जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रजा हेतु शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान नाम के उनके नामों को भगवान नाम के समान। तो ये दस नाम अपराध में सबसे भारी कौन सा है मालूम है आपको? वैष्णव की ये सबसे भारी है। बाकी सब अपराध से मान लो आप छूट भी सकते हैं, बाकी ये अपराध जो कभी छूटता नहीं है, इसलिए सूरज से धारा कवि हो जाती है ना, इसलिए इसको सूरज से धारा कहते हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज बहुत साधारण समाज नहीं है, है ना। जो समाज में हम रहते हैं वो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, है ना। हालांकि हम इस परिस्थितियों को समझते नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीवात्मा होता है जो भगवान की कृपा प्राप्त करता है और गुरु की भगवान और कृष्ण की कृपा से वो भक्ति में जुड़ता है, भक्ति लता को प्राप्त करता है। तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति इस ब्रह्मांड में। भगवान ने भी गीता में कहा है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबदंते वासुदेव सर्वमिति समान। तो ये सब लोग जान गए अभी वासुदेव ही सर्वमिति। तो आप जानते हैं भगवान की नजर में भी वो व्यक्ति कैसा है? बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों की तपस्या के बाद इन लोगों को ये याद हुआ है कि वासुदेव ही सर्व इति, भगवान वासुदेव ही सर्व कुछ है, ये इसने मान लिया है। अभी खतरा है कि मान लिया इसलिए खतरा है, अगर वो किसी और को भी सर्वमिति मानता तो चल जाता, उसको थोड़ा एक दो लात भी मार दो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसने मान लिया कि वासुदेव ही सर्वमिति, तो भगवान की नजर में भी वो बहुत बड़ा व्यक्ति है ना। जो व्यक्ति ने भगवान कृष्ण ही सब कुछ है ये मान लिया, मतलब भगवान की नजर में भी। तो भगवान खुद कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामते, एक जन्म की तपस्या से नहीं होता है, बहुत बहुत जन्म की जब सुकृति होती है तब जाके वो मानता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वतारण सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, इस प्रकार की मानसिकता भी किसी के अंदर, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, भले ही वो हरे कृष्ण में जुड़ जाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन पहले शिव जी के भक्त रहते हैं ना, तो उसको छोड़ नहीं सकते, मन में तो बने ही रहता है, भले ही वो बाहर से नहीं दिखाएगा, लेकिन भगवान की कृपा है कि हमको वैष्णव परिवार में ही जन्म दिया। हालांकि हम रुद्र संप्रदाय से थे, लेकिन अभी ब्रह्म संप्रदाय में आ गए, लेकिन रुद्र संप्रदाय में ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं था कि मैं रुद्र काम करके, वैष्णव है इतना जानते थे। तो बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति ये समझ सकता है कि अनादिराजिर गोविंद सर्व कारण, कारण के कारण भगवान गोविंद भगवान कृष्ण ही। तो वैसे समाज के अंदर हम रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिस समाज में बड़े बड़े लोगों को भी रहने का स्थान नहीं मिलता, उस समाज में हमको रहने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन उस समाज में रहने के बाद सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हम क्या करेंगे, इसकी उधर और इसकी उधर, ये स्वभाव है हमारा, क्योंकि हमारे स्वभाव में चेंजेस नहीं आया है। बंदर चाहे कितना भी आप उसको एक जगह पे बैठा के हाथ पे सीधे करके रखो, लेकिन 10 साल से छोड़ने के बाद भी हो क्या अपनी गुलंटी मारना छोड़ देगा? वैसे हमारी भी यही आदत है, और ये आदत हमारी छूटती किसी भक्त की, यहाँ की वहां और वहां की यहाँ, ये आदत नहीं छूटती है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, यही सूरज से जा रहा है, इसके इससे दूसरा भक्ति में दूसरा कोई खतरा ही नहीं है, भक्ति में और कोई खतरा नहीं है। और यहां तक भगवान के जो भक्त होते हैं, गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य, जो मेरा भजन करता है मैं ही अनन्य, मेरी ही अनन्य भाव से शरणागति जो प्राप्त किया है, अगर वैसे भक्त जो है अपि चेत सुदुराचार, उसके द्वारा भले ही कैसा भी दुराचरण हो जाए, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं भगवान उसमें आगे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य, भगवान कहते साधु रेव से मंतव्य, मानो, मंतव्य मतलब क्या है, मानो, मेरा मत है कि वो साधु है, अभी आपको क्या बोलना है, भगवान बोलते हैं मैं उसको साधु ही बोलूंगा, भले ही अपि चेत सुदुराचारो, भले ही वो कितना भी दुराचरण में उतर जाए, किंतु फिर भी अगर वो मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण किया है, तो फिर वो व्यक्ति कैसा है, साधु रेव समझते हैं, उसको साधु ही मानना है, उसको और कुछ मत समझा। तो हो सकता है भगवान अपने भक्त की कभी कभी परीक्षा लेते हैं, और हर भक्त की एक ही ओर से परीक्षा ले रहे, ये भी जरूरी नहीं है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा ऐसा नहीं है कि उसको उस प्रकार से परीक्षा लिए तो इसकी भी ऐसी परीक्षा है, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान कई सारे एंगलों से अलग अलग रूप से भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, किंतु भगवान भले ही उस परीक्षा में वो पास हो या फेल हो, भगवान उसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, क्योंकि भगवान जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, कुंभार बोलते हैं, मटका बनाता है वो कुंभार, तो कुंभार जो होता है अपने मटके को बनाने के लिए मटका जब उसको शेप दे देता है, शेप देने के बाद थोड़ा सुखाता है, सुखाने के बाद कहाँ डालता है उसको, अग्नि में डालता है, उसको जलाया जाता है, तो जब अग्नि में खूब जलता है, जलने के बाद जब बाहर रखा जाता है, थोड़ा हल्का हल्का ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या करता है, ऐसा मारेगा, कच्चा है कि हर ओर से ये पक गया है, कि अगर नहीं भी पका है तो मान लो उसका ये भाव नहीं होता है क्या कि इसको फोड़ दो, समझ रहे हो, कभी कभी भले ही उसको ऐसा कर करके उसका उंगली हड्डी में थोड़ा दर्द भी हो गया हो, तो कोई पत्थर लेके भी ऐसा मारते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्थर लेते हैं छोटा और ऐसा मार के उसको जांचते हैं कि ये पक गया है या, हालांकि उस कुंभार का ये भाव नहीं होता है, उसको अगर वो फूट जाए फिर भी उसको दुख नहीं होता, मट्टी लेके क्या करेगा, फिर से उसको बनाएगा, फिर से बनाने के बाद फिर से अग्नि में डालेगा और फिर से उसको क्या करेगा। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो कौन है, भगवान सबसे बड़े कुंभार है, आप जानते हैं क्यों मालूम है क्या, अगर ये सब कुंभार कितना बड़ा मटका बना सकते हैं, आपने बड़े से बड़ा मटका कितना बड़ा देखा है, इतना बड़ा, इतना ही बड़ा बना देना हमको। लेकिन देखिए एक एक भक्त ने कहा है, ऐसा गाया है बहुत सुंदर, उसने कहा है कि हे प्रभु, इस दुनिया को बनाया आपने, आप कितने बड़े कुंभार हैं, इस ब्रह्मांड को बना के आधा जल से भी भर दिया आपने, है ना। भगवान ने जो है सबसे बड़ा मटका बनाया, उसमें आधा भर दिया, और मटका भी कैसा बना कि उसमें जाके भी सो गए। तो सबसे बड़े कुंभार कौन है? इसलिए कुंभार लोग को गर्व भी है, मालूम है आपको, होनी की जाति है, भगवान हमारी जात के कुंभार। हालांकि भगवान की कोई जात नहीं है, और भगवान के देश में, भगवान के राज्य में कोई जाति पाति नहीं है ना। वहां शबरी भी जा सकती है और कुमार चतुष कुमार भी, वहां पे चतुष कुमार जो है वो उच्च कोटि के ब्राह्मण है और स्वयं ब्रह्मा के ही पुत्र, इसलिए ब्राह्मण है। तो जन्म से ही ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है, तो जन्म कर्म दोनों से ब्राह्मण है। और वहां पे वो शबरी जो एकदम कैसी है, निकृष्ट जाति की। तो यहाँ पे देखिए चतुष कुमारों को भगवान के पास जाना पड़ा। कई बार देखते हैं कि वो भगवान की भजन साधन किए और उसको वहां पे फिर भी भगवान के पास उन लोग को क्या करना पड़ता है, जानते हैं ना, जय विजय को फिर वहां पे जाके एंट्री मिलता नहीं मिलता भरोसा नहीं है। लेकिन शबरी जैसी वो नीच कुल में उत्पन्न हुई, शबरी का मालूम है ना आपको, बहुत ही नीचा कुल था उसका। जो वर्णन मिलता है कि शबरी जो है वो बहुत ही अच्छी भक्त थी, गत जन्म में भी भक्ति किए थे उन्होंने, इसके कारण उनका हृदय जो था वो बहुत ही अच्छा हृदय था ना, भक्त का हृदय था। इसलिए उसके पिता ने क्या किया कि विवाह के समय उसने बहुत सारे बकरों को, बकरी बकरों को मंगवा के उसको काट के फिश बनाना था। जब उसको पता चला कि ये बकरे मेरी शादी के लिए ही कटने वाले हैं, तो भाग्य बोली कि नहीं, शादी नहीं करो, अगर मेरे कारण इतने लोगों को मरना पड़े तो नहीं। क्योंकि निज स्कूल में ऐसा होता है कि वो नीच कुल वाले लोग, अगर उसका प्रसंग कुछ आता है तो मदिरा पान करना और मांस मटन खाना ये लोग का, वो ऐसा क्षत्रियों में भी होता है ना, फेस्टिवल के समय पे खा लेते हैं। तो इस प्रकार की भावना है, ये नीच कुल जो होता है, मतलब उन लोगों के नीच कुल नहीं, उन लोगों को कुछ, जैसे वैश्य को तो बिल्कुल परमिशन नहीं दिया गया, ब्राह्मणों को नहीं दिया गया है मांस मदिरा आदि खाना, लेकिन ये दो कुल वालों को दिया गया है, एक तो है ये क्षत्रिय कुल और एक है इससे अधम कुल, है ना। तो ये दो कुल वालों को कभी कभी परमिशन दिए है शास्त्र में, है ना, कि कभी कभार फेस्टिवल आदि में खा जाए, क्या करे, रहा नहीं जाए तो वेद में तो फिर उसकी मानसिकता और स्थिति को देखते हैं। और वो क्या है, क्षत्रिय लोग होते हैं थोड़ा उसका खून कैसा होता है, गर्म होता है, होता है कि नहीं प्रभु जी, तो खून थोड़ा गर्म होता है, आपको नहीं बता रहा आप तो बड़े दयालु हो, तो स्वाभाविक है कि उनका जो खून होता है ना थोड़ा रजोगुणी और, है ना, एक्टिव होता है। इसलिए कभी कभी वो फेस्टिवल में वो मदिरा पान करने आती है, उसके गुणों के अनुसार उसको दिया जाता है। और जो अधम कुल वाले हैं उनको तो इतना दिमाग है नहीं, तो वो तो कभी भी खाते हैं, इसलिए उसको चांडाल आदि कई सारे जगहों पर उसको संबोधन दिया गया। चांडाल को मतलब जो कुत्ते को गीता में भगवान कहते हैं स्वपच, स्वपच आया शब्द जानते हैं, स्व मतलब क्या होता है, कुत्ता, कुत्ते को संस्कृत में स्व कहते हैं, और पच का अर्थ होता है पचा ले, जो कुत्ते को भी खा के पचा ले उसको स्वपच कहते हैं। सुनी चैव स्व पाके चा पंडिता समदर्शिना, भगवान गीता में कहते हैं कि इन लोगों को, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किन किन को? सुनी चैव स्व पाके च पंडिता समदर्शिनो, उसमें हाथी और आदि ब्राह्मण आदि लोग सभी को, ब्राह्मण हो चाहे हाथी हो चाहे कुत्ता कुत्ते को खाने वाला भी हो, इन सबको एक ही दृष्टि से देखना, उसमें कोई ऊंचा कोई नीचा। लेकिन ये बहुत ही ऊंची स्थिति का भगवान ने वर्णन कर दिया, ये अर्जुन भी फिर मना करेंगे, ये क्या महाराज प्रवचन दे देता। तो स्वपच का अर्थ होता है जो कुत्ते को भी खा के पचाने, तो वैसे कुल में भी उत्पन्न जो ये शबरी थी उनके घर पे स्वयं भगवान गए, और वहां पे उस चतुष कुमार को क्या करना पड़ता है, वैकुंठ लोक में जाना पड़ता है भगवान को दर्शन। तो हालांकि और सृष्टि के प्रथम जीव ऐसे ही माने जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा के बाद तुरंत किसका जन्म हुआ? चार कुमारों का। और चार कुमार जो है वो चारों की मानसिकता एक है, चारों के चारों जो विचारते ना वो एक ही विचारते, नहीं तो जय विजय के समय पे चारों का डिसीजन अलग हो सकता था, लेकिन चारों में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, चारों का विचार एक ही था। और जन्म से ही वो जो जब से जन्म लिए है तब से भक्ति में भी वो साथ में है, और ये चारों को अलग से कभी नहीं गिना जाता है, ये चार जो है भले ही वो चार है लेकिन फिर भी वो एक ही। उसको कभी आप सुने सनत ने ऐसा किया, सनातन ने ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं, चतुष कुमारों ने ऐसा किया, जहां भी आप सुनेंगे ऐसा ही सुनेंगे कि ये चार कुमारों ने ये किया। वैसे भागवतम की शुरुआत करने वाले कौन है आप जानते हैं? भागवत सप्ताह ये होता है, उसकी सबसे पहली शुरुआत कौन किया था? चार कुमार है ना। ये भागवत सप्ताह की विधि को सबसे पहले प्रवर्तक कौन है? चार कुमार। क्योंकि नारद मुनि पद्म पुराण अंतर्गत ये कथा मिलती है, नारद मुनि जब भी भक्ति महारानी को देखे थे वृंदावन में, हाँ वृंदावन में बिल्कुल बूढ़ी होके गिरी हुई है, तो अस्वस्थ अवस्था में जब भी उसने देखा तभी वहां पर जाके नारद मुनि ने पूछा, नारद मुनि तो जा रहे थे उसने कुछ देखा भी नहीं, लेकिन भक्ति महारानी देखा कि नारद मुनि जा रहे हैं और मेरी यह हालत है, तो निश्चित है कि साधु जो होते हैं वो हमारे दुख को दूर करेंगे। तभी नारद मुनि को बुलाया, उसको कहा कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशयन, मेरी जो चिंता है उसको नाश करो हे साधु, थोड़े समय के लिए रुक जाओ। तो उसको रुकाए और फिर उसको अपनी समस्याओं का वर्णन किए कि देखिए मेरे ऐसा ऐसा हालत है मेरा, तो आप मेरी समस्याओं को दूर कीजिए। उसने क्या किया? चार वेद पढ़े है ना, 17 पुराण पढ़े, क्योंकि 18 पुराण वो समय पे नहीं बने है ना, 17 पुराण पढ़े, इवन भगवत गीता महाभारत आदि ग्रंथों को भी उसको सुनाया, लेकिन भक्ति महारानी में कोई फर्क नहीं पड़ा उसका न ज्ञान। उसके दो पुत्र है, भक्ति महारानी के दो पुत्र है, कौन कौन है वो? ज्ञान और वैराग्य जो है वो उसके पुत्र है। तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र में भी कोई फर्क नहीं पड़ा और न स्वयं भक्ति महारानी में भी कोई अंतर आया। तब जाके नारद मुनि बहुत ही चिंतित हुए, बोले कि मैं इतने वेद और शास्त्र पढ़ा दिया लेकिन भक्ति में ही कोई चेंजेस, तो फिर इतने सारे वेद शास्त्र पढ़ के वो जो भक्ति करेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा? इसलिए उसने कहा कि नहीं अब कुछ उपाय करना होगा। अभी वो बहुत चिंता तो होके यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उतने में अभी नारद मुनि और चिंता की रेखा है उसके मुख के ऊपर, उतने घूमते घूमते चार कुमार उसके सामने मिले। तो चार कुमार ने देखा कि ये महाराज होके भी क्यों चिंताग्रस्त है, साधु मतलब एकदम बिंदास होना चाहिए, उसको किसका टेंशन है? नारद मुनि को तो चार कुमार ने यहाँ तक कहा कि आपको कहाँ बीवी बच्चे है जो चिंता का इतना आपके मुख के ऊपर चिंता की है, आपको कहाँ बीवी बच्चे और कुछ आगे पीछे इतना चिंता लेके घूम रहे हो, क्या 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 वजह क्या है इतना चिंता तो होने की? तभी जाके नारद मुनि ने अपनी समस्या को वर्णन किया कि ऐसा ऐसा है। तभी जाकर नारद मुनि को चार कुमार ने कहा कि आप भागवत सप्ताह विधि का आयोजन कीजिए। सप्ताह नारद मुनि को भागवत सप्ताह मतलब क्या समझते हैं? सप्ताह मतलब सातों दिन सुनना है, रविवार से शनिवार, संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सातों दिन सप्ताह भर सुनना है, समझ रहे हैं? सप्ताह भर सुनना है,
सप्ताह ही क्यों वर्ष भी कह सकते हैं?
नहीं नहीं वर्ष क्यों कहा जाए, सप्ताह ही कहा गया। आपको मैं बताऊं, आप जानते हैं 24 आवर मेडिकल वाले क्या लिखते हैं जानते हैं आप?
24 आवर
मेडिकल जो चलता है 24 घंटा दवाइयाँ बिकती है, वहाँ पे मेडिकल कहीं बंद नहीं होता है, उसमें वो लोग क्या लिखते हैं जानते हैं? 365 दिन खुला रहता है ऐसा लिखता है क्या कोई? एक साल भर सालों भर खुला रहेगा ऐसा लिखता है क्या कोई? 24 आवर लिखते हैं, तो 24 आवर क्यों लिखते हैं वो? अगर ज्यादा क्वांटिटी में ही लिखना है तो क्या लिखना चाहिए उसको? क्या लिखना चाहिए उसको? कभी बंद नहीं होने वाला मेडिकल ऐसा लिखा जाता है।
तो इसलिए
इसीलिए देखो वो लोग ऐसा भी नहीं लिखते, 24 घंटे कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस अभी हमने तो बहुत बार देखा है, 7 × 24 × 7 ऐसा लिखते, मतलब इज इक्वल टू भी करते हैं 365। एक दिन मैं टोटल मारा, बोला ये कौन से हिसाब से, फिर मेरे दिमाग में बोला कि अच्छा 24 घंटा और 7 दिन, तो 7 दिन और 24 घंटा क्यों लिखा, 7 दिन क्यों लिखने की जरूरत है,
7 दिन लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ ऐसा चलता है कि एक दिन छुट्टी रहती है, इसलिए लिखने की जरूरत है,
इसलिए 24 लिखते हैं ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक दिन छुट्टी हो तो एक भागवत के जो होता है वो पहले से नहीं जानते है क्या सप्ताह विधि का, इसलिए हो सकता है सप्ताह का इसलिए बताया कि 7 दिन सुनना है, कारण ये है कि एक दिन छुट्टी वो लोग को आदत तो पड़ी जाएगी तो इसमें भी छुट्टी हो सकता है ना ऐसा, इसलिए उन्होंने सप्ताह दिखाया
जाए।
सप्ताह विधि वो लोग करते हैं वो, हालांकि कलयुग में उसकी उसी शास्त्र में जहां पर सप्ताह विधि का गुणगान किया गया है ना, उसी सप्ताह विधि के अंतर्गत उस सप्ताह विधि के जो वक्ता है ना उसकी बहुत निंदा की गई, इसलिए प्रभुपाद महाराज ने मना किया कि भागवत का जो वक्ता अगर सप्ताह विधि से करेगा तो निश्चित है कि वो गिरेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो भक्ति नहीं करता है, इसलिए उसको मना किया गया। प्रभुपाद ने समर्थ गुरुओं को आज्ञा दिए हैं कि आप कर सकते हैं, प्रभुपाद ने कुछ लोगों को नाम दिए हैं कि आप लोग जो है वो भागवत सप्ताह विधि से कर सकते हो, जैसे यशोमती नंदन गुरु को कहा है किंतु फिर भी वो नहीं करते, हमारे गुरु महाराज को भी कहा था कि आप भागवत सप्ताह के द्वारा प्रचार कीजिए, तो कुछ भक्त है जिनको आज्ञा दिए थे प्रभुपाद महाराज समर्थ जान के, तो उन लोगों को आज्ञा के कारण वो कर सकते हैं सप्ताह विधि से भागवत का प्रचार करते हैं, लेकिन भागवत में उसी भागवत के वक्ताओं की निंदा भी की गई है, मूल मात्रम नहीं है, नहीं तो मैं आपको श्लोक भी सुना देता है ऐसे कि उसमें किस प्रकार से निंदा की गई, उसमें कहा गया है भागवत के जो वक्ताओं के खा पी के सांड जैसे हो जाएंगे और पुत्र उत्पन्न करने में बहुत दक्ष होंगे, ऐसा मैथुनादि क्रियाओं में दक्ष होंगे और भक्ति के लिए तो उसका कोई मन लगेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत बोल वचन कर लेंगे लोगों को सुना देंगे, इस प्रकार की उन लोगों की और कई सारे दृष्टांत भी मिलते हैं। भागवत कथा करता, भागवत कथा करता था उसकी घरवाली ने कभी सुना नहीं था, बाजू के गाँव में भागवत, तो सारे दृष्टांत गलत भी नहीं है, वो सारे दृष्टांत सही भी है, तो ये हालत होती है, इसलिए भागवत सप्ताह विधि जो बहुत ही ऐसे खतरा पैदा करती है ना, और हमने तो कई लोगों को देखा भी है, गिरते हुए भी देखा और चढ़ते हुए भी देखा है, और चढ़ाने में हम ही लोग उसको धक्का भी दिए, चढ़ाते भी हम ही और गिरते हुए देखे भी हम ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, इस विधि को ग्रहण करने की अगर योग्यता हमें नहीं है तो हमको नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से अगर गुरु आज्ञा हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो उसको करने में बहुत ही खतरा है। जैसे राधा भागवतम ऐसे सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा करते हैं सप्ताह के लिए, एक हफ्ता करते हैं, नहीं वो लोग ऐसा करते हैं, वैसा होता नहीं है, वैसे ऐसी स्थिति नहीं है, भागवत वैसे पूरा भागवत कोई बताता नहीं है, भागवत जो होता है उसमें कोई पूरा भागवत नहीं बताता है, वो बड़ी बड़ी कथा है, जैसे प्रथम स्कंध के अंतर्गत आएंगे तो बस वो आगे का प्रथम अध्याय का जो दूसरा श्लोक की व्याख्या करेंगे, फिर वो ऋषि मुनियों का संवाद हुआ उसमें 6 प्रश्न भी नहीं बताएंगे, क्या क्वेश्चन के आंसर वो ऐसे ही बजाएंगे, वहां पे जाके नारद मुनि और व्यास का जो संवाद हुआ वो बताएंगे, फिर पहले स्कंद में परीक्षित महाराज की कथा बता देंगे, इतना खत्म होता है ये 2 कथा पहले स्कंद की, और दूसरे स्कंद में थोड़ा सृष्टि का वर्णन है, वो तो आज तक मैं किसी वक्ता को एक्सप्लेन करते हुए नहीं सुना, भागवतम के दूसरे स्कंद का जो सृष्टि का वर्णन है उसका आज तक स्वर्ग जो है उसका कभी मैं वर्णन नहीं सुना, कोई वक्ता भागवत सप्ताह के अंतर्गत उसका वर्णन कर ले वो नहीं सुना, क्योंकि उसमें कोई कथा नहीं है। और फिर तीसरे स्कंद में जाएंगे तो फिर वहां पे कपिल मुनि आदि की कथा है तो थोड़ा बहुत उसको बताएंगे, चौथे में ध्रुव महाराज की कथा है तो उसको सुनाएंगे ध्रुव कथा, पांचवें में भरत महाराज की कथा सुनाएंगे, छठे में अजामिल चित्रकेतु आदि की कथा है वो सुनाएं, सातवें में जाके प्रहलाद महाराज सुनाएंगे, आठवें में गजेंद्र मुख सुनाएंगे, नौवें में जाके राजा महाराजा का 2-4 चरित्र सुना के वहां पे भी बाहर, भागवत सप्ताह करना मतलब क्या प्रदीप? मैं भी कर लूंगा, बिना पढ़े लिखे ऐसे ही बैठ जाऊंगा और भागवत सप्ताह कर लूंगा, लेकिन उसको भागवत सप्ताह नहीं कहा। ऐसे ही दस पास कंतों भी है ही है, लीलाओं से भरा हुआ है मस्त। फिर तो इस प्रकार से भागवत विधि जो है भागवत सप्ताह ऐसा, हालांकि कोई व्यक्ति भागवतम को पूर्ण रूप से खुले नहीं कर सकता है। हमारे गुरु महाराज के पास एक जन एक भक्त गए थे, उसने कहा कि मैं भागवत कथा कर सकता हूँ, बोले कि हाँ कर सकते हो। फिर उसने पूछा कि कैसे करते हो, बोले 7 दिन में पूरा भागवत करना होता है। बोले मूर्ख मत बनो, 7 दिन में कोई व्यक्ति पूरा भागवत बोल ही नहीं सकता है। सात दिन में, क्योंकि नॉन स्टॉप कहा गया हुआ भागवत है, दिन रात चलता था ये भागवत, और तब जाके ये 18,000 श्लोक कौन बता पाए? सुखदेव जी महाराज। 7 दिन नॉन स्टॉप चला था, ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा लंच खा पी के आओ, घूम फिर के आओ, उसके बाद वापस बैठो फिर सुनाता, ऐसा भी नहीं। और थोड़ा सो जाओ, यहाँ पे अभी रात हो गई है तो सो जाओ, फिर सुबह उठ के नहा धो के फिर से चलो, ऐसा नहीं, नॉन स्टॉप चलता था ये 7 दिन नॉन स्टॉप चल रही थी। तो आपको लगेगा कि ये 7 दिन के अंदर ये नॉन स्टॉप अगर कथा चले तो ये तो आज के कुछ पाठ होता है, जानते हैं भागवत पाठ होता है, उसमें तो हो जाता है
एक दिन में समाप्त।
एक दिन में भागवत का पूरा पाठ कोई नहीं कर सकता, कितना भी फास्ट पड़ेगा वो नहीं कर सकता। तो उसको मतलब मैक्सिमम 7 दिन में तो खत्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो जिसको भागवत का थोड़ा अभ्यास हो गया है वो लोग कर सकते हैं। तो फिर 7 दिन के अंदर वो नॉन स्टॉप रूप से, ये तो जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो तो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ता है, मैक्सिमम 12 घंटा पढ़ के वो पूरा 7 दिन में खत्म। तो ये सुखदेव जी महाराज ने पूरा भागवत 7 दिन में सुना दिया, थोड़ा अजीब लगता है, मतलब उसने तो निश्चित है कि लंच टाइम दिया होगा उसने। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं, हम जैसे कुत्ते की तरह पढ़ते हैं ना वैसा नहीं पढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज जब भागवत कथा कर रहे थे तो उन श्लोकों को ऐसा नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा नहीं किए थे उन्होंने। उन्होंने जब भागवत कथा का प्रारंभ किया था तभी इन सारे श्लोकों को गा के सुनाया जाता है, क्योंकि ये पद्य क्या बोलते हैं, गद्य और पद्य, पद्य है ये जो भागवतम है वो क्या है, ये कह के सुनाया ऐसा नहीं है, सारे श्लोकों को गाया गया। और आप जानते हैं गाने में समय लगता है, जब उसको गाए भगवत गीता के श्लोक को गाओ और पढ़ो ना, पढ़ने में फटाफट पढ़ डालेंगे, लेकिन जब गाया जाता है तो उसमें समय लगता है। तो उसी प्रकार ये जो 18,000 श्लोक है भागवतम के उसको गाया गया है, इसलिए परीक्षित महाराज उसको आराम से, और सुखदेव जी महाराज बहुत ही अच्छा गायक थे, इसलिए उसको कीर्तन आचार्य कहा जाता है, कथा आचार्य नहीं है। कौन है वो? कीर्तन के आचार्य, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। कीर्तन में क्या करते हैं, इतना अच्छा कीर्तन करते हैं कि भगवान की लीलाओं को गाते हैं, अभी पद्य बना बना के गाते हैं। तो इस प्रकार तो सबसे अच्छे हैं कीर्तन के आचार्य, और इन इन सारे श्लोकों को गाया गया है ना। जैसे हम लोग कभी कभी गाते हैं सैव प्रथम देव हमारम सर्वमाश्रित ब्रह्म चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य खंडितम, ये जो है वो ऐसे भी नहीं गाए थे, बहुत सुंदर राग में गाया जाता है श्लोक को ना, वो राग में गा के उन्होंने सुनाया था, इसलिए इतना समय और बड़े प्यार से सुनते भी थे। और इसका कोई अनुवाद और व्याख्या नहीं होता था, इसकी कोई व्याख्या उसी में वो मतलब समय भी मिलना चाहिए ना, जो बात बोल रहे हैं गाएंगे तो उसके ऊपर विचार किया जाता है, गाने में समय लगता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि, ये जो गाया जाता है ना तो सच्चिदानंद रूपा है, तो उसमें उतना समय मिल जाता है कि विचार कर ले, और उसके बाद विश्वत्पत्यादि तो उसमें समय मिल जाता है, गात जो सॉन्ग होता है ना उसके ऊपर विचार किया जाता है, लेकिन जब कंटिन्यू सुनाया जाता है तो उसके ऊपर विचार नहीं होता, वो क्या बोल रहा है उतना ही सुन सकता है, बात के ऊपर विचार व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उनके ऊपर विचार भी करते हो तो अपने आप व्याख्याएं भी होते ही जाती थी अपने मन के अनुसार। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या आदि होता है। और क्षमा करिए थोड़ा विषयांतर हो गया, श्रीमद् भागवतम को सुनाने वाले भक्ति महारानी से, तो भागवत भक्ता की इस प्रकार से निंदा भी की गई और भागवत सप्ताह विधि का गुणगान भी किया गया। तो सबसे प्रथम भागवत के प्रवक्ता कौन है? चार कुमार। चार कुमार ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि को सिखाया, ये भागवतम है और इस भागवतम को जाके जब सुनाओगे तो भक्ति अपने आप नाचने लगेगी। अच्छा पक्का? बोले हाँ। तभी उसको सुनाया और उसका विधि का वर्णन किया। तो सबसे पहले नारद मुनि ने कहा कि महाराज अगर आप इतना अच्छा करते तो आप ही आ जाओ थोड़ा हमको, आप ही करो हमारा एक क्लास, आप ही ले लो। तो चार कुमार के द्वारा श्रीमद भागवतम का आयोजन हुआ और चार वक्ता। श्रीमद भागवत के प्रथम कितने वक्ता थे आप बोलो? सुनने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन सबसे पहले भागवतम के वक्ता कितने हुए? चार आसन लगे और चार जन बोलते हैं। ऐसा देखा है क्या? भागवतम में कई सारे ऐसे वक्ता हुए हैं। वक्ताओं के विषय में जब एक बार मैं मतलब विचार कर रहे थे, देखिए कैसे कैसे वक्ता हुए। भीष्मदेव जो थे एकदम बाणों की सैया ही उसका आसन था और उसी पे सोए सोए प्रवचन दिए और सुनने के लिए बड़े बड़े लोग, भगवान कृष्ण स्वयं खड़े थे। भीष्मदेव जब भी प्रवचन दिए तब सबको बुलाए, महाराज इधर आओ, ये महाराज कुछ बोल रहे, सुनो क्या बोले। वो सोए सोए प्रवचन दिए और सुनने वाले सब खड़े खड़े सुन रहे। हालांकि विधि ये है कि वक्ता बैठे और सभी लोग बैठ के सुने, ये विधि, लेकिन वो ना बैठे ना कुछ, कोई बैठा नहीं, सब खड़े थे और वक्ता जो थे वो सोए और वो कथा किए। और ये चार कुमार चार आसन लगा। प्रथम भागवत सप्ताह के वक्ताओं का कितना आसन? चार आसन में भागवत सप्ताह। तो चार कुमार जो है वो उनकी सारी मानसिकता एक समान है, उसमें कभी भी आपस में मचमच नहीं होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, उसको विजय विजय को ऐसा नहीं, उसको ऐसा ही करना चाहिए। हम चार के हम दो ही रहे तो हमारे विचारों में परिवर्तन होता है ना, हमारे जो डिसीजन होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन चार कुमार के विचारों में उनकी भावनाओं में कोई भेद नहीं है। और इस प्रकार से चारों बहुत ही अच्छे भक्त है। पहले तो ये जो है जन्म लिए तो सबसे पहले ब्रह्म की उपासना करते थे, लोग साकार उपासना नहीं करते थे, जानते आप। ये लोग जो है चार कुमार सबसे पहले निर्विशेषवादी थे, तब जाके वो लोग आगे जाके तपस्या की और भगवान का स्वरूप का जब दर्शन किए उन्होंने, और भगवान फिर भी भगवान के स्वरूप के दर्शन करने के बाद भी वो लोग मानते थे कि निराकार से साकार हुआ है। फिर आगे जाके उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों के अंदर जो तुलसी था, उस तुलसी के अंदर जो सुगंध था, उस सुगंध को जब भी उन्होंने सुंघा तभी उसको ये ब्रह्म ज्ञान जो भागा और क्या हुआ, फिर वो आगे जाके वैष्णव भक्त साकार स्वरूप को स्वीकार किया और फिर उनका भजन प्रारंभ किया। तो सबसे पहले ये भी निराकारवादी थे, तो निराकारवादियों की सबसे पहले से ही ये सब चले आ रहा है ब्रह्म उपासना। और इस बात को भागवतम में मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाया है। भगवान की महिमा का वर्णन करते समय उन्होंने कहा है कि तस्यारविन्दनस्य पदारविन्दे किंजल्प मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सुविवरेण चकार तेषां सक्षोभम अक्षर जशोम चिंत तनो। इसमें कहा है जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों ने नथनों में प्रवेश हुई, उस मुनियों के नथनों में जैसे ही उस वायु का अंदर प्रवेश हुआ तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान के प्रति अनुरक्त निर्विशेषवादी थे, उस ज्ञान के प्रति वो अनुरक्त थे, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण कमलों से वो तुलसी का स्मेल आया, भगवान के संपर्क में आने से, देखिए उसको कोई ज्ञान देने नहीं गया, भगवान के संपर्क में आने से वो निराकारवादी से निर्विशेष से भक्ति मार्ग में आ गए। तो इस प्रकार ये चार कुमारों का वर्णन मिलता है और भी है भागवतम में, जय विजय आदि के वहां गए तो भगवान ने किस किस प्रकार उसको उसके साथ व्यवहार हुआ क्या हुआ, ये सब कथा तो बहुत फेमस है, इसलिए उसकी व्याख्या करना भी उतना। तो इस प्रकार से ये चार कुमार जो है वो सबसे प्रथम अवतार है और ये शक्त्यावेश अवतार है, समझ रहे हैं? ये शक्त्यावेश, शक्त्यावेश अवतार का अर्थ होता है जीवात्मा के अंदर भगवान अपनी शक्ति को आवेशित करते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, शक्त्यावेश अवतार, शक्ति का आवेश हो जाना है ना, कभी भूत का आवेश हो जाता है, होता ही नहीं, उसको क्या कहते हैं, भूतावेश होता है। और उसी प्रकार शक्ति का जब आवेश होता है, आवेश का अर्थ होता है उसमें डालना है ना, समावेश होना, तो उस शक्ति का आवेश होता है, तभी उस शक्तावेश अवतार खाया है। वैसे भूतावेश आदि भी कई सारे शक्तिवेश अवतार के रूप में ये चार कुमार हैं, और इसके बाद कितने कितने कौन से अवतार होंगे ये
पुरुष अवतार,
हाँ। हाँ वैसे आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, आप जो बता रहे हैं सबसे पहले सृष्टि में पुरुषावतार है ना, जो तीन पुरुष हैं, वो तीन पुरुष के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुआ, सृष्टि प्रारंभ हुआ तभी युगा चालू नहीं हुआ, सबसे पहले क्या चालू हुआ, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए सबसे पहले ये हुआ, ये अवतार पुरुष अवतार, उसके बाद वैसे इसमें नहीं बता, इसके अंतर्गत नहीं, ये तो सृष्टि कैसे कैसे प्रारंभ हुआ उस हिसाब से ये चला आगे। और देखिए शिव जी का भी इसमें अवतार के रूप में गिनाया गया, इसमें शिव जी भी आएंगे आगे, आप पढ़ेंगे इसमें, इसमें शिव जी का भी वर्णन आएगा, शिव जी भी आएंगे। तो शिव जी जो है वो वैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, उसको क्रोध आया, जब ये चार कुमार को ब्रह्मा जी बोले कि आप जाओ शादी करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ, बच्चे बच्चे पैदा करके, तभी वो चार कुमार बोलेंगे नहीं महाराज हमको शादी वादी, पिताजी हमको शादी नहीं करना है, ब्रह्मचारी रहेंगे और भगवान की उपासना करके वो धाम जाएंगे। अभी चार कुमार के ऊपर तो उतना क्रोध नहीं आया, हम सोचते कि जाने में पहले बेकार पुत्र हो गया, तभी जाके उसने नारद मुनि को प्रकट किया। जब जाके नारद मुनि दूसरा अवतार, मतलब इसके ब्रह्मा जी अवतार नहीं बोला जाएगा, ऐसे अवतार क्रम अलग दिया गया है यहाँ, तो दूसरे स्वरूप में उन्होंने किसको प्रकट किया, नारद मुनि। जब नारद मुनि को कहा गया कि वह आप इस सृष्टि, उसने कहा कि नहीं हो तभी उसका दिमाग सटा कि जो पैदा हो रहा है उसमें मना ही कर रहा है मेरी बात को, अब मैं अपने पिता की बात, मैं अपने बाप की बात को मानता हूँ।
नारद मुनि पहले तो उस नारद मुनि उसके पहले दासी
ये भी प्रश्न आता है, नारद मुनि जो पहले दासी पुत्र थे प्रभु जी, फिर यहाँ पे कैसे उसका जन्म हो गया, कैसे शक्ता है सरकार हो
गया,
ऐसा नहीं है, फिर भी इसका लिंग है। जैसे भले ही ब्रह्मांड ब्रह्मांड का प्रलय होता है, ब्रह्मांड मतलब इसमें भी छह प्रलय होते हैं ना, छह प्रलय में अंतर्गत ये एक प्रलय है, जैसे युगों के अंत में भी प्रलय हो जाता है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, फिर से पूरी सृष्टि का प्रारंभ होता है। जैसे ये युग का अंत होता है, चतुर्युग जो होता है उसका अंत पे पूरा प्रलय होता है, सारा सृष्टि नष्ट हो जाता है, और ये भी एक प्रलय है, उसके बाद कई सारे प्रलय का वर्णन है। तो जब भी इस पूरे ब्रह्मांड का भी प्रलय होता है तभी सारे कर्मानुगच्छति जीवा, जीव जो है वो कर्म के अनुसार ही गति को प्राप्त करें, तो वो समय पे जितने जीवात्माएं होते हैं मतलब वो खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है, वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, समझ रहे, सुप्त अवस्था में चले जाते। फिर जैसे ही सृष्टि प्रारंभ होता है, ब्रह्मा आता है, ब्रह्मा आता है तो भगवान उसको शक्ति व्यक्ति देते हैं, सारे जीवों को छोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी गतियों के अनुसार उसको फिर से जन्म लेते जाते हैं सृष्टि फिर, तो उसी अंतर्गत ब्रह्मा नारद मुनि का वो एंड हुआ था वहां पर, तो जैसे सृष्टि प्रारंभ हुआ चालू हुआ तो फिर से उसको सृष्टि का तो आदि है ही
ना,
जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि होता है,
भगवान का अनादि
जीवात्मा जो है वो अनादि, समझ रहे, जब ब्रह्मांड का लय होता है तभी वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, भगवान के अंदर ही चले जाते हैं, समझ रहे, ब्रह्मांड के साथ वो जीवात्मा ही सब, और जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर से उसका जो जो कर्म है उस अनुसार फिर से वो सृष्टि
मतलब आदि है,
सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत वैसे है, देखिए सृष्टि की शुरुआत कैसे है, क्योंकि सृष्टि फिर से बन रहा है, लेकिन जीवात्मा का जो कर्म का वो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो तो फिर से चालू हो जाएगा,
सबसे पहले भी कोई सृष्टि नहीं होगी, नहीं होगी, ऐसे किस बात बनी है, ऐसे सबसे पहले भी कोई बनी होगी,
ऐसे तो
इसका आदि नहीं है,
इसका आदि नहीं है, ये भगवान की सृष्टि लीला अनादि कालों से चल रही है। भगवान की लीला भी अनादि है क्योंकि भगवान भी अनादि है, और ये सृष्टि भी भगवान, आप जानते हैं इसको सृष्टि लीला कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सृष्टि लीला, भगवान इसमें भी मजे लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं घूमते छोड़ से छोड़ में घूमते क्या है? वो षोड़श षोड़श इंद्रिय जानते हैं, सोलह सोलह उसमें विषय रूप रस शब्द गंध आदि भी आ जाते हैं, और ये जो दस इंद्रिया हमारी जो है वो दस इंद्रिया भी आ जाती है, और सबसे बड़ा है मन, ये मन भी आ जाता है। ये सोलह वस्तुओं के द्वारा भगवान क्या करते, भोग करते हैं जीवात्मा के अंदर बैठ के। ये कौन बोलते हैं, सुखदेव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान भी बहुत चतुर है, क्या करते हैं जीवात्मा के अंदर बैठते हैं, और वो जीवात्मा सोचता है मैं भोग करता हूँ, लेकिन अल्टीमेट भोगता कौन है, भगवान, वो अंदर बैठ के भोग करते हैं, ये सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान भोग करते हैं। लेकिन वो भोग करते हैं तो उसको कोई बंधन नहीं है, अगर वही भोग हम करते हैं तो भगवान बोलते हैं भोगता मैं हूँ, आप लोग भोगता नहीं है, आप भोग्य है, अगर आप भोगने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए आप भोग नहीं सकते, भगवान सभी जीवात्मा है। तो भगवान की ये सृष्टि लीला है, इसको भगवान ने क्या, इसको क्या नाम टाइटल दिया जाता है, सृष्टि लीला, इसमें भी वो मजे मारते हैं, उसमें भी क्या करते हो, हिरण्यनाथ हिरण्यकशिपु को भेजते हैं और उधर जाके फाइट फाइट करते हैं, और मजे लेना भगवान का कार्य, तो वो अपने धाम से भी आते हैं वृंदावन में आदि लीला करते हैं, तो ये भी सृष्टि लीला है, ये क्या है, सृष्टि लीला। तो सृष्टि को प्रकट करना, कर्मानुगच्छति जीवा, कर्म के अनुसार जीवों को गति आदि देना, और ये सृष्टि को चलाना, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसको मैनेज करने में बड़ा मजा आता है, भगवान तो मैनेज करना उसके लिए आनंद है, हमारे लिए भले ही बोरिंग है लेकिन भगवान के लिए बहुत आनंद की बात है, क्योंकि उसको दम नहीं लगाना पड़ता है ना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो बस वो संकल्प किया प्रॉब्लम सॉल्व, तो संकल्प शक्ति से कार्य होता है तो किसको मजा नहीं आएगा। अगर मान लो हमारा भी मंदिर चल रहा है लेकिन बस संकल्प किया कि बड़ी जगह मिल जाए और बड़ा मंदिर बन जाए, कहीं डोनेशन मांगने मत जाओ कुछ नहीं, कितना मजा आएगा, तब तो ये मंदिर बनाने में भी मजा आएगा, एक क्या बनाएगा, हजारों मंदिर बनाएंगे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको तो करना पड़ता है उसको, है ना, एक मंदिर बनाने के भागो, यहाँ जाओ इससे पैसा लाओ, इसको पैर पकड़ो यहाँ से, और इतना होने के बाद भी मंदिर चलते रहे उसके लिए थोड़ा ध्यान दो, और पैसा भी तो खत्म होता है तो लेके आओ कहीं से मांगो क्या करो, है ना। तो इस प्रकार से हमको जब करना होता है तभी लगना पड़ता है उस क्रिया के लिए, लेकिन भगवान को ना, भगवान खाली संकल्प किए और तो भगवान के लिए ये लीला है, भगवान के लिए एक आनंद है, और कभी कभी मन करता है तो खुद भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा संकल्प शक्ति से ही कर लेते हैं, कभी कभी मन करता है तो खुद भी घूमने चले जाते हैं, चलो थोड़ा विहार करके आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार है वो लीला अवतार में, जानते हैं मत्स्य अवतार को लीला अवतार में गिना गया, भगवान को कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया मछली बनके तैरना है तो आ गए मछली बनके और समंदर में तैरना चालू तो इस प्रकार से भगवान की लीला है ना। तो सत्यव्रत राजा थे ना, वो जिसके पास हो गए थे, सत्यव्रत राजा के पास गए, सत्यव्रत राजा बहुत अच्छे भक्त थे, आगे आए गए मत्स्य अवतार से मधुरंग में, तो किस प्रकार भगवान यहाँ पे भी विहार करने के लिए आए, तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, भगवान एकदम सोने की तरह, मछली जो थी वो सोने की तरह चमचमा रही थी, और जब समंदर में गई तो पूरा समंदर वैसा ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई सूर्य अंदर जाके गिर गया, ऐसा सुंदर भगवान का शरीर था, और सोच सकते हैं कि वो समंदर भी कितना सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार भगवान उसमें बस कुछ नहीं, उसको पूछा गया क्यों आया, बस ऐसे ही घूमने फिरने आ गए, लीला होता है भगवान, तो भगवान की ये सृष्टि जो है वो भी एक लीला है, भगवान को आनंद आता है इसको, और उसमें कई सारे पीछे भी जाते हैं हमारे जैसे, और हम तो अपनी इच्छा से पीछे जाते हैं उसमें, तो चार कुमार जो है वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त है, भागवत के सबसे सबसे प्रथम प्रवक्तक जो है, प्रवक्ता या फिर जो कहिए वो कौन है, नारद, ये चतुर कुमार, और चार कुमारों ने नारद मुनि को सुनाए, नारद मुनि भी राज के भक्ति नारायण को आदि, वो सब अरेंज करने वाले कौन थे, नारद मुनि थे ये सारे। और इस प्रकार चार कुमारों का वर्णन और जगहों पे भी मिलता है, लेकिन विशेष बात मतलब बुरी बात यह है कि मैं आज थोड़ा आलस के कारण पढ़ नहीं पाया, फिर भी जितना थोड़ा बहुत याद था एक दो श्लोक इसमें मैं पढ़ा था कभी तो उसको बताया, और ना चार कुमार का जो भागवत की परंपरा है उसका भी थोड़ा वर्णन किया, और चार कुमार तो अपने आप में संप्रदाय भी चलता है, उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं, कुमार संप्रदाय भी आप जानते हो निम्बार्क पीठ, और निम्बार्क संप्रदाय वो जगदीश कुमारों का संप्रदाय, उसमें निम्बार्क आचार्य और उन्होंने ये चालू किए थे, मतलब उसको और भी विस्तार किए कलयुग में, कलयुग में भी चार आचार्य हुए, चारों परंपराओं के चार आचार्य हुए, और उस चारों परंपराओं के चार, जैसे हमारे अंदर कौन आचार्य हुए, मध्वाचार्य कलयुग में आए थे, मध्वाचार्य ने आके पूरे भारत भर में ये वैष्णव संप्रदाय का क्या किया, प्रचार किया। इसके बाद कुमार संप्रदाय के अंतर्गत निम्बार्क आचार्य आए, और रुद्र संप्रदाय के अंदर कौन आए थे, विष्णु स्वामी, और उसके बाद और एक संप्रदाय कौन सा बचिया, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के अंतर्गत रामानुजाचार्य, सुना है ना रामानुजाचार्य, सब कलयुग के आचार्य हैं, और ये भगवान के द्वारा स्पेशल भेजे गए हुए लोग हैं। रामानुजाचार्य जो है वो स्वयं लक्ष्मण जी के अनंत शेष के अवतार, कलयुग में भगवान अनंत शेष के रूप में आके प्रचार करके गए, और ऐसे ही निम्बार्क आचार्य जो कुमार संप्रदाय इनके आचार्य और निम्बार्क आचार्य, तो वो भी कुछ शंख आदि के अलग अलग अवतार हैं भगवान के, हाँ सुदर्शन, हाँ सुदर्शन के अवतार है, निम्बार्क आचार्य जो है वो सुदर्शन के अवतार है, वैसे ब्रह्म संप्रदाय में हमारे मध्वाचार्य आदि जो कुछ शंख और आदि के अवतार माने गए, उतना याद नहीं है मुझे, तो निम्बार्क आचार्य है, इसलिए वो चारों संप्रदाय को कलयुग में विशेष रूप से फैलाए और बहुत अच्छा प्रचार, चारों संप्रदाय में भगवान विष्णु की भक्ति होती है, हाँ रुद्र संप्रदाय को अपना करवाना चाहिए ऐसा ना, क्योंकि रुद्र जो है वो भगवान के ही भक्त है, भले ही अभी के मूर्ख लोग ये उनकी पूजा उपासना करते हैं, लेकिन शिव जी पसंद नहीं करते इस बात को, शिव जी खुद भी हमेशा भगवान के नाम का जप करते और उनकी उपासना करते हैं, वो विष्णु भक्त नहीं है, जो शिव जी की उपासना करता है वो विष्णु भक्त नहीं है, उसको शैव कहा जाता है,
रुद्र संप्रदाय वाले वैष्णव
नहीं, वो वैष्णव है, क्योंकि वो देखिए इसमें दो प्रकार के हैं, एक है वपु सेवा करने वाले और एक है वाणी सेवा करने वाले, समझ रहे हैं, वपु सेवा करने वाले कौन है, जो शिव जी की भक्त है, बोलो शैव जिसको कहा है, और वाणी सेवा करने वाले कौन है, ये संप्रदाय जो चल रहा है वो है ना रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय, तो वो संप्रदाय जो है उसके अंतर्गत शिव जी के उपदेशों को जो दिया है उसी के अनुसार वो चलते हैं, आप जानते हैं मैं अभी आपको रामायण तो मैं लेके नहीं बैठा, उसमें कई सारी जगह पर स्वयं शिव जी बोलते हैं, अरे मेरे जैसे करोड़ों शिव आ जाए और करोड़ों ब्रह्मा आ जाए ना, फिर भी राम के सामने हम लोग टिक नहीं सकते, वो भगवान राम वो मेरे आराध्य, उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत एक सपना, तो हरि का भजन करना ये वास्तविकता है, बाकी सब स्वप्न है, तो हरि का भजन वहां पे कह सकते थे कि मेरा भजन करना ही सत्य है बाकी सब बेकार है, तो शिव जी ऐसा नहीं कहे, शिव जी जहां जहां आप उसका कमेंट्री सुनेंगे वहां पे उन्होंने कहा है कि भगवान हरि का भजन करना और यही जीवन
है, राम जी ने कहा
भले ही राम जी ने कहा है लेकिन शिव जी का क्या मत है, देखिए उस समाज को आप और भी ध्यान से और आचार्यों से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जैसे बहुत विवादास्पद है ये बात, मुझे पता है
ज्यादातर लोग पूछते हैं,
बहुत विवाद करते हैं इस बात के ऊपर, और आप और भी उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उस मैटर को क्लियर करना चाहिए, जिसमें कहा गया जैसे भगवान राम युद्ध करने जा रहे थे तो सेतु के बाद पास गए और फिर उसने रामेश्वर की स्थापना की, और रामेश्वर स्थापना करने के बाद रामेश्वर नाम क्यों पड़ा उसके ऊपर भी चर्चा चल रही,
रामेश्वर है कि राम के,
हाँ उस रामेश्वर जब उसको नाम दिया गया तो रामेश्वर के ऊपर, क्योंकि रामेश्वर जो नाम है वो किसने दिया, राम ने दिया, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम ने ये कहा, तो राम ने जब ऐसा कहा तभी शिव जी से नहीं रहा, शिव जी ने क्या कहा, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, राम जिसके ईश्वर है वो है रामेश्वर। राम ये कहते हैं कि राम जी, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, लेकिन शिव जी से नहीं रहा गया, वो वहां पे प्रकट होके अपना भी कमेंट दीजिए, बिल्कुल गलत है। बोले कि राम के, राम जिसके ईश्वर है वो है रामेश्वर। फिर देवताओं ने अपना मत दिया और फिर ऋषियों ने लास्ट लास्ट मत किसका माना जाएगा मालूम है? ऋषियों का मत माना जाता है। देवताओं ने क्या कहा मालूम है? देवता बड़े मूर्ख है। बोलो क्यों? क्योंकि वो बहुत स्वार्थी है, अपना काम निपटाना चाहते हैं, वो लोग को कुछ नहीं है, चाहे तुम ईश्वर हो चाहे तुम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ही स्वार्थी है, इस बात को उसने बहुत ध्यान से, वो लोग ने क्या जवाब दिया मालूम है? राम भी ईश्वर है और शिव जी भी ईश्वर। इतने हरामी चीजें करते हैं वो लोग, आज के लोग जैसे आज के लोग, वो भी भगवान है, वो भी भगवान, जिसको मानो वही भगवान। क्योंकि दोनों से काम पड़ता है ना उनको, तो अपना काम निकालने के लिए दोनों के ही गुण गा दिए, लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्ख है। फिर आगे जाके ऋषियों ने मत दिया, नहीं राम जिसके ईश्वर है ना वही रामेश्वर, क्योंकि राम जो है परम ब्रह्म पूर्ण मतलब पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों में उत्तम है, इसलिए ऋषियों का मत है कि राम जिसके ईश्वर है ना वही रामेश्वर है, शिव जी ईश्वर नहीं है। और ऐसे कहा जाए, मान लो आप कहते रामेश्वर अर्थात राम के ईश्वर, राम के क्या हुआ
संस्कृत में रामेश्वर का मतलब राम के ईश्वर ही
हुआ, राम के ईश्वर हुआ ना। देखिए आप ऐसा बोलते हैं रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? राम के ईश्वर, ऐसा नहीं होता है। राम जिसके ईश्वर है ये भी होता है, समास आप जानते हैं, ये समास का अर्थ है ना, समास का अर्थ। तो हर बार विभक्ति की आप छठाई विभक्ति लगाएंगे क्या? राम जैसे ईश्वर स रामेश्वर, ऐसा नहीं होता है। छठा विभक्ति क्यों लगाएंगे हम लोग? और आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है, ये शब्दों के अंदर राम जिसके ईश्वर है ये भी एक विभक्ति बनता है और ये भी एक समास बनता है ना। समास के कई सारे प्रकार है, उसमें ये भी एक समास बनता है कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, ये भी समास बनता है। वो समास का भी ज्ञान में वो पूरा पढ़ा था, लेकिन समास के अर्थ के अनुसार मैं कौन सा समास कौन सा विभक्ति वो सब याद किया था, लेकिन भूल जाते हैं समय। तो फिर अंत में ये ऋषियों का मत है, ये पता है मुझे कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, ये बात सही है, ये प्रामाणिक है। और फिर ऐसे अगर शब्द के अर्थ के अनुसार भी अगर विचार किया जाए तो आप सोचिए, रामेश्वर मान लो रामेश्वर नाम है, तो राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है ये माना जाए, मान राम के जो ईश्वर है वो, ईश्वर का क्या अर्थ होता है जानते हैं? नहीं जानते ना। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोल, क्या होता है? और कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? किसके हाथ में?
भगवान का,
भगवान के हाथ में, वो शिवजी के हाथ में नहीं है। भगवान शिवजी के हाथ में क्या है मालूम है? नाश करो, ये उसके हाथ में, और मेंटेन करना उसको ईश्वरता किसके हाथ में है? वो विष्णु के हाथ में, और इसलिए वो राम जो है वो विष्णु तत्व है, इसलिए राम ही ईश्वर है, समझ रहे? राम ईश्वर है इसलिए वो शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं, ये बात सही है। तो अगर शब्द के अनुसार अर्थ भी लिया जाए तो गलत नहीं है। तो रामेश्वर है, राम ही ईश्वर, इसलिए शिव जी ईश्वर नहीं है, राम ईश्वर। इसलिए रुद्र संप्रदाय जो है वो उनकी बातों का, आप देखेंगे रामायण में तो भर भर के शिव जी की कॉमेंट्री सुनेंगे रामायण में, वहां मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कि गुरु नर सुनी सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। इसके बाद भी बहुत सुंदर बताया कि भगवान जो है वो ऐसे नहीं है, स्वार्थ नहीं है। सुर नर मुनि, सुर नर और सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य और मुनि मतलब मुनि, तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सबका यही व्यवहार है। क्या व्यवहार है? स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सबको स्वार्थ है इसके लिए प्रेम है, बाकी किसी को प्रेम प्रेम कुछ है नहीं, सबको स्वार्थ है अपना इसलिए प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान जो है वो अकारण प्रेम करने वाले पुरुष है ना, जिसको कुछ कारण नहीं है, हमसे क्या प्रयोजन है भगवान को, फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो ये भगवान की उस शिव जी ने बहुत गुण गाए हैं एक्चुअली रामायण में, वो अभी रामायण तो मैं अभ्यास छूट गया है और यहाँ भी बताना कम होता है इसलिए थोड़ा भूल गया हूँ रामायण में, तो बहुत सुंदर उनकी कृपा को मैं बहुत याद करता था। रामायण में शिव जी का जो वास्तविक स्वरूप है वो रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इसलिए शिव जी का जो परंपरा है वो एक वाणी सेवा करने वाले लोग हैं और एक है वपु सेवा करने वाले, और जितने भी वपु सेवा करने वाले हुए वो सब बदमाश हुए। रावण भी बदमाश हुआ, उसके अभी जितने भी श्रेय है वो सभी बदमाश ही है, उसमें कोई अच्छा आदमी नहीं होता। इसलिए हालांकि उन लोगों की भी निंदा करना बेकार है, लेकिन अगर विष्णु भक्त के साथ में उसकी तुलना किया जाए तो उसके सामने ये बदमाशी है। और एक्चुअली ये बदमाशगिरी ही है, क्योंकि शिव जी खुद भी नहीं चाहते कि मेरी उपासना करें। शिव जी हमेशा चाहते हैं कि भगवान विष्णु की शरण ली जाए और उसकी भक्ति की जाए, नहीं तो अपनी घरवाली को तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, अपनी घरवाली को तो कोई झूठ नहीं बोलेगा ना। तो अपनी घरवाली ने भी एक बार पूछा कि महाराज सही बताओ किसका भजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तभी उसने कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन से लेते। सही बताता हूँ, सत हरि भजन भगवान हरि का भक्ति करना, उनकी सेवा करना, यही सत्य है, बाकी सब बेकार है। मैं तो बोल सकते, तू मेरी सेवा कर रही है तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो बड़ा वैष्णव हूँ। भगवान की सेवा करो, यही सबसे बड़ी बात है, यही करना है और यही जीवन है। तो शिव जी की कॉमेंट्री सुनेंगे तो उसमें से हमको कई जगह आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हालांकि अभी तो बहुत सारे बदमाश लोग हुए हैं, लेकिन जितने बड़े देवता हुए, जितने भी मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे जितने भी लोग आज दुनिया में हैं, इंद्र चंद्र वरुण शिव जी चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे नारद व्यास आदि, कितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे भगवान हो सप्तर्षि ऋषिगण है ना, और ध्रुव महाराज सबसे ऊपर के लोग में जितने भी बड़े बड़े देवता सभी लोग हैं, उन सब में से किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। समझ रहे, मैंने इस दुनिया को बनाया, आज तक कोई नहीं बोला। इस दुनिया में बोलने वाले केवल एक हुए और वो है भगवान कृष्ण। अर्जुन के सामने उस महाभारत युद्ध में गीता जो सुना है तब उसने कहा कि हाँ अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते। भगवान कहते मैं ही सबका प्रभव, प्रभव मतलब प्रकट करने वाला मैं हूं, मेरे ही द्वारा सब प्रवर्तित है। भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं बोला आज तक कि मैं इस दुनिया का, इवन विष्णु भगवान भी कभी नहीं बोलते कि मैं इस दुनिया को बनाया, खुद नहीं बोलते हैं स्वयं। हालांकि उसके पास जाके सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस संसार के पालन करता है इसको करते, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन खुद विष्णु बोले ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण खुद आके बोले सब मैंने बनाया, सबका आदि और अंत मैं ही हूं। इस प्रकार का ज्ञान तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण एक्चुअली गोविंदम आदि पुरुष तो वही है, बाकी तो है ऐसे तो है ना, अन्य जैसे शिव जी है गुणा अवतार आदि है, लेकिन मूल रूप से ईश्वर अवतारी पुरुष को है तो वो भगवान कृष्ण। तो उन्हीं के अवतारों का और भी कौन से सत्यावेश अवतार आदि आदि अवतार होंगे तो इनका वर्णन आगे अभी करेंगे है ना। तो क्षमा करिए थोड़ा मैं चतुष्कुमारों के विषय में इतना डिटेल से हमको नहीं बता पाए, तो फिर भी प्रयास करेंगे अगली बार जब। हरे कृष्ण।